नमस्कार, दिप्रिंट के सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं फाल्गुनी शर्मा आज आपको पूर्व आईएएस संजीव चोपड़ा का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। आपातकाल की विरासत। 1977-1989 के लोकसभा चुनावों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला। संजीव अपने लेख में लिखते हैं, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के दौरान भारतीय राजनीति में कई आमूलचूल परिवर्तन हुए। जयप्रकाश नारायण के सुझाव और आग्रह पर चार मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट पार्टी 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए जनता पार्टी के रूप में एक साथ आए। जब जगजीवन राम, एच एन बहुगुणा और नंदिनी सतपती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया और इंदिरा गांधी के आपातकालीन शासन की निंदा की तो उन्हें मजबूती मिली। ये उथल पुथल भरा दौर था जिसमें मीडिया पर अंकुश, नेताओं को जेल में डालना, जबरन नसबंदी, संजय गांधी की युवा कांग्रेस का एक गैर संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में उदय और कांग्रेस में पारंपरिक पार्टी ढांचे का पतन देखा गया। फिर भी 1977 के चुनावों में इसकी हार कांग्रेस और गांधी के लिए हैरानी की बात थी, जिनके अनुचरों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आपातकाल लोकप्रिय है, खासकर लोक लुभावन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कारण जिसकी उन्होंने शुरुआती दिनों में घोषणा की थी। जैसा कि समकालीन राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा, इंदिरा गांधी के पास चुनाव उनके पक्ष में जाने की उम्मीद करने के कई कारण थे। देश में तुलनात्मक रूप से अच्छी फसल हुई थी, कीमतें हालांकि बढ़ रही थी, आपातकाल से पहले की अवधि की तुलना में काफी कम दर से बढ़ रही थी। सरकार ने हरिजनों को आवास स्थल आवंटित करने, भूमिहीनों को जमीनों का पुनर्वितरण करने, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को समाप्त करने या कम से कम कम करने और शहरी अवैध निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान करने के अपने कार्यक्रम में कुछ सफलताओं का दावा किया। लेकिन मार्च 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी गठबंधन को 41.32% लोकप्रिय वोट और साथ ही 295 सीटें मिली। कांग्रेस ने 34% वोट शेयर और 154 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। आगामी दशकों में तीन चुनाव हुए, 1980, 1984 और 1989। प्रत्येक की देखरेख एक अलग चुनाव आयोग द्वारा की गई। क्रमशः एसएल शकदर, आरके त्रिवेदी, आरवीएस पेरी, हर एक ने प्रमुख राजनीतिक बदलावों को करीब से देखा। 1980 के चुनाव छठी लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से काफी पहले हुए थे। ये जनता दल के घटकों के बीच मुख्य रूप से प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर अंदरूनी कलह के कारण थे। जुलाई 1989 में मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को रास्ता दे दिया, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपना वादा किया हुआ समर्थन वापस ले लिया, देश में दोबारा चुनाव हुए। इस चुनाव में न केवल श्रीमती गांधी की वापसी हुई बल्कि भारतीय राजनीति में प्याज फैक्टर की शुरुआत भी हुई। उस समय मुद्रास्फीति के कारण कई भारतीय प्याज नहीं खरीद पा रहे थे और जैसा कि एक लेखक ने कहा है, कांग्रेस की तेजस्वी प्रविष्टि एक अनोखे वादे के साथ हुई थी, प्याज की कीमतों पर काबू पाना। युवा पीढ़ी को उस समय की खपत का अंदाजा देने के लिए 6 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज को बिल्कुल अस्वीकार्य माना जाता था। 2 दशक बाद प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने में विफलता के कारण सुषमा स्वराज को दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि कीमतें गिरने पर प्याज आंसू भी ला सकता है क्योंकि किसान भी वोटर है। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि प्याज पर 31 मार्च 2024 तक निर्यात प्रतिबंध लगा हुआ है और इसे चुनाव की अवधि तक बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता प्याज की कीमतों पर नाराज ना हो। 1980 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 42.69% लोकप्रिय वोट और 353 सीटें मिली, जो मार्च 1971 के चुनावों में उनकी प्रभावशाली संख्या 352 से 1 सीट ज्यादा थी। हालांकि यह अवधि पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर में उथल पुथल से भी चिन्हित थी, जब 31 अक्टूबर 1984 को गांधी एक हत्यारे की गोली का शिकार हो गई तो उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और नए जनादेश की मांग की। सहानुभूति लहर और आक्रामक अभियान पर सवार होकर कांग्रेस ने 1984 का चुनाव भारी बहुमत से जीता, 49.10% लोकप्रिय वोट और 414 सीटें हासिल की। आगामी चुनाव में भाजपा की 404 सीट से भी अधिक। 1984 के चुनाव में भाजपा पहली बार मैदान में उतरी, पार्टी को 7.74% वोट मिले लेकिन उसने केवल 2 सीटें जीती। दिलचस्प बात रही कि सीपीएम ने 5.87% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती और हैरानी की बात यह थी कि एनटीआर के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के पास केवल 4.31% वोट के साथ 30 सांसद थे। ये मुख्य विपक्षी दल बनने वाली पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई, एक ऐसी उपलब्धि जो कभी दोहराई नहीं गई। 1989 के चुनाव आरवीएस पेरी शास्त्री के कार्यकाल में हुए। उस समय तक 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 1989 के चुनाव आरवीएस पेरी शास्त्री के कार्यकाल के दौरान हुए। उस समय तक 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, जिससे 4.7 करोड़ से अधिक मतदाता और जुड़ गए। ये उनके कार्यकाल के दौरान था कि भारत सरकार ने 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके आयोग को एक बहुसदस्यीय निकाय में विस्तारित करने की पहली कोशिश की। इस कदम को व्यापक रूप से शास्त्री की शक्तियों को कम करने की कोशिश की तरह देखा गया, जिन्होंने चुनाव के समय या संचालन पर सरकार द्वारा धमकाए जाने से इनकार किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग की दिशा में पहला कदम भी उनके कार्यकाल में उठा। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजी सोमैया, जो 1953 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ने अपनी किताब द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में शास्त्री को एक समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1989 के चुनावों में खंडित जनादेश आया। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 39.53% लोकप्रिय वोट मिले। उसकी लोकसभा सीटों की संख्या 414 से गिरकर 197 हो गई। ना तो सीपीएम के नेतृत्व वाली वामपंथी पार्टी, ना ही बीजेपी, जिसने 11.36% वोट से बढ़त हासिल की थी और 85 सीटें भी जीती, कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार नहीं थे, जो बोफोर्स घोटाले के आरोप से जूझ रही थी। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल के नेता वीपी सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाजपा और सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के भारी समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। वीपी सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि वामपंथ और दक्षिण पंथ के बीच विरोधाभासों ने राजनीतिक व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से अस्थिर कर दिया। ये महीनों बाद ढह गया जब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में लालू ने रोक लिया। भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 7 नवंबर 1990 को संसदीय विश्वास मत हार गई। इस प्रकार वीपी सिंह की 11 महीने की सरकार ने चंद्रशेखर की जगह ली, जिन्होंने कांग्रेस के भारी समर्थन से सरकार बनाई। ये भी टिकने वाला नहीं था। जून 1991 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे अगले चुनाव का रास्ता साफ हो गया। इस बार मुख्य फोकस उम्मीदवारों और पार्टियों पर नहीं, बल्कि रहस्यमय टीएन सेशन पर था, जिन्होंने दिसंबर 1990 में चुनाव आयोग के महान कर्णधार का पद संभाला था। दी प्रिंट के सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।